प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें। मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा नमस्कार। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से दूसरे राजाओं की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 11वें और 12वें अध्यायों को देखेंगे। 11वें अध्याय का शीर्षक है बालक राजा युआश। बालक राजा युआश। युआश यहूदा का 8वां राजा था और ये जब सिंहासन पर बैठा तो इसकी आयु 7 वर्ष की थी और इसने 40 वर्ष तक यहूदा पर राज किया। ये एक अच्छा राजा था। इसे अच्छे राजाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। आज हम इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। मित्रवर, पिछले अध्यायों में हमने देखा कि अहाब और इजाबेल की कथा कोई अच्छी कथा नहीं थी। यहू ने उन दोनों का और उसके संपूर्ण घराने का नाश कर दिया। परंतु अहाब इजाबेल की एक पुत्री थी। उसका विवाह यहूदा अर्थात दक्षिणी क्षेत्र के राजकुमार से हो गया था। यही स्त्री इस समय यहूदा प्रदेश की राजमाता थी और ये अहाब के घराने में सबसे अधिक नीच स्त्री थी। उसका नाम अतलिया था। अतलिया ने ऐसे ऐसे घृणित कार्य और हृदय को कपा देने वाले कार्य किए। संभवतः आपको उन पर विश्वास ना हो, सो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रकाश में अतलिया के जीवन का भी अवलोकन करते हैं। किंतु इससे पूर्व कि हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं, हम अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेमी पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं कि आज के इस सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें। हमें बुद्धि और समझ दें कि हम आपके पवित्र वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और इसके अनुसार आचरण भी कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी समस्या में उलझा हुआ है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए, और यदि आपके पास बाइबल की प्रति नहीं है तो ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट कीजिए। राजाओं की दूसरी पुस्तक उसका 11वां अध्याय प्रथम पद, दूसरा राजा 11 अध्याय पहला पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, जब अहज्या की माता अतलिया ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया है, उसने उठकर संपूर्ण राजवंश का विनाश कर डाला। हम देखते हैं कि अतलिया ने अपने समस्त नाती पोतों की हत्या कर दी। कैसी भयंकर और खूंखार स्त्री थी ये। अतलिया ने दाऊद के संपूर्ण घराने का अंत करने का प्रयास किया और ये वास्तव में शैतान का एक कार्य था। मेरे मित्र, शैतान का एक अन्य प्रयास था ये उस वंश को समाप्त करने का, जिसके द्वारा परमेश्वर जगत के उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजेंगे, अर्थात जिस वंश से प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाले थे। शैतान समस्त यहूदी जाति को नष्ट करने का प्रयास करता रहा है और इस विषय में हम अनजान नहीं हैं। और शैतान इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि मानव जाति का मोक्ष दाता इस संसार में जन्म न ले सके, मनुष्य के पापों का संतोषजनक व सिद्ध प्रायश्चित न हो सके। उसके छुटकारे की कीमत जो पवित्र निष्कलंक और निर्दोष मेमने का लहू है ना बहाया जा सके, उसकी कीमत ना चुकाई जा सके, परिणाम स्वरूप नरक मनुष्यों से भर जाए। परंतु मेरे मित्र, ये सृष्टि परमेश्वर की है, उद्धार की योजना परमेश्वर की है और वह अपनी योजना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तब दूसरे और तीसरे पदों में हम पढ़ते हैं, परंतु अहज्या की बहन अर्थात राजा योराम की पुत्री यहोशेबा ने घात किए जाने वाले राजपुत्रों में से अहज्या के पुत्र योआश को अलग करके उसकी दाया सहित शयन कक्ष में छिपा दिया और वह उसके साथ यहोवा के भवन में 6 वर्ष तक छिपाए रखा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस बालक को 6 वर्षों तक यहोवा के भवन में छिपा कर रखा गया और अतलिया देश पर राज्य करती रही। अब उधर तो अतलिया देश पर राज कर रही है, इधर ये बालक युआश 6 वर्षों से यहोवा के भवन में है। तब युआश यहूदा के सिंहासन पर विराजमान होता है। आइए चौथे पद को देखें। 7वें वर्ष में यहोयादा ने संदेश भेजकर कारीगरों और पहरेदारों के शतपतियों को बुलवाकर उन्हें यहोवा के भवन में ले आया। तब उसने उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उन्हें शपथ खिलाकर राजपुत्र दिखलाया और उन्हें ये आदेश दिया कि तुम्हें ये करना है कि तुम में से एक तिहाई जो सप्त के दिन को आते हैं वे राजभवन का पहरा दें, एक तिहाई सूर नामक फाटक पर भी रहें तथा एक तिहाई फाटक पर पहरेदारों के पीछे रहें, जहां वे सुरक्षा के लिए भवन का पहरा दें। और तुम्हारे दो भाग जो सब्त को बाहर जाते हैं, वे सब राजा के लिए यहोवा के भवन का पहरा दें। तब तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पंक्तियों के भीतर घुसे वह मार डाला जाए। राजा जब भी बाहर जाए और भीतर आए, तुम उसके साथ रहना। इस प्रकार यहोयादा ने राजा को उसके सिंहासन पर बैठाने के लिए एक योजना बनाई। उसके साथियों ने उसी के अनुसार कार्य किया। और तब 12वें पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने राजपुत्र को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट रखा और उसके हाथों में साक्षी पत्र दिया, और लोगों ने उसे राजा बनाया और उसका अभिषेक किया और तालियां बजाकर कहा, राजा दीर्घ आयु हो। 9-12 पदों में हम देखते हैं कि दक्षिणी राज्य के लिए यह दिन एक महान दिवस था, क्योंकि इस दिन दाऊद के वंश से उनको एक राजा मिला है, दाऊद का उत्तराधिकारी। मित्र, परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी गई वाचा को पूरा किया। उसके घराने का दीपक सदा सर्वदा जलता रहेगा, परंतु कुछ समय के लिए सभी बातें अत्यंत निराशाजनक प्रतीत हो रही थीं। सो हम देखेंगे कि अतलिया का वध किया जाता है। अब अगला हमारा विषय है अतलिया का वध। 13वें पद से देखें, अतलिया पहरेदारों और लोगों का कोलाहल सुनकर यहोवा के भवन में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार स्तंभ के समीप खड़ा है तथा शतपति एवं तुरही वादक भी समीप खड़े हैं, और सब लोग आनंद मना रहे हैं तथा तुरही बजा रहे हैं। तब अतलिया अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, राजद्रोह, राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने सेना के शतपतियों को आदेश देकर कहा, उसे पंक्तियों के बीच घेर कर बाहर ले चलो, और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था उसे यहोवा के भवन में घात ना किया जाए। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया, और जब वह उस द्वार पर लाई गई जिससे घोड़े राजभवन में प्रवेश करते थे, वहां उसका वध किया गया। 14वें पद में हमने देखा कि ये अतलिया जब परमेश्वर का राजा इसराइल पर यहूदा पर नियुक्त किया गया तो कहती है, राजद्रोह, राजद्रोह। वास्तव में ये राजद्रोही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि शैतान का अपना एक राज्य है, परंतु वह वास्तव में उसका नहीं है। उसने परमेश्वर के विरुद्ध राजद्रोह करके उस पर अधिकार करने का प्रयास किया है। राज्य तो परमेश्वर का है। आज जो लोग जीवित व सच्चे परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं, जो उनके पुत्र मसीह यीशु को अपने व्यक्तिगत मोक्षदाता अर्थात राजा के रूप में ग्रहण करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होते हैं। संसार और शैतान उन्हें राजद्रोही कहता है, परंतु स्मरण रहे, इस सृष्टि एवं इस धरा का राजा शैतान नहीं, वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। उन्होंने स्वयं वध होकर शैतान पर और मृत्यु पर विजय पाई है। वे ही राजाओं के राजा हैं। उन्हीं का राज अनंत काल का राज्य है। और हम देखते हैं कि अतलिया ने उन्हें राजद्रोह का दोषी ठहराने का असफल प्रयास किया, और यहोयादा याजक के कहने के अनुसार उसका वध कर दिया गया। अग्रिम पदों में हम देखेंगे कि इसके तुरंत पश्चात ही उनमें जागृति आ गई है। 17वें पद को देखें, तब यहोयादा ने यहोवा और राजा तथा प्रजा के मध्य यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसी प्रकार राजा तथा प्रजा के मध्य भी। तब सब लोगों ने जाकर बाल के भवन को ढा दिया, उसकी वेदियों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा बाल के मत्तान नामक पुरोहित को वेदियों के सामने वध कर दिया। तब याजक ने यहोवा के भवन के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए। फिर वह शतपतियों, कारीगरों, पहरेदारों और प्रजा के साथ राजा को यहोवा के भवन से पहरेदारों के फाटक से होकर राजभवन में लाया। वहां राजा राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। मित्रवर, ये परमेश्वर के समीप वापस लौटने का समय था, और वे इस कार्य को आरंभ करते हैं। वे मूर्ति पूजा को छोड़कर जीवित और सच्चे परमेश्वर की शरण में आते हैं। यहोयादा याजक बड़ी बुद्धिमानी के साथ इस आंदोलन का संचालन करता है। उसने उन्हें परमेश्वर यहोवा की उपासना करने के लिए एक वाचा में बांध लिया। बाल देवता की उपासना समाप्त कर दी गई। ये यहूदा में भी प्रवेश कर चुकी थी, जैसा कि अभी हमने देखा। संभवतः लोग परमेश्वर के भवन भी जाते थे, परंतु साथ ही बाल की उपासना भी करते थे। आज भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, और इसलिए इसे उखाड़ फेंकना अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने बाल के भवन को ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके पुरोहित को भी वध कर दिया। मित्रवर, आज भी हम इन कार्यों की पुनरावृत्ति होते हुए देख रहे हैं। अनेक लोग स्थानीय कलीसिया में भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे रविवार को आराधना में सम्मिलित होते हैं। वे रविवार को बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं, परंतु शेष सप्ताह भर वे शैतान के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। अधिकांश सदस्यों का जीवन ऐसा ही है। हमें इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। यदि हम इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम संकट में, जोखिम में पड़ेंगे। जब कलीसिया में जागृति आएगी, तभी बुराई का विरोध किया जाएगा, दुष्टता से घृणा की जाएगी, और जब घृणा होगी तो दुष्ट के कार्यों को दूर किया जाएगा। मेरे मित्र, शायद आप परमेश्वर की ओर से खड़े होकर शैतान के द्वारा राजद्रोही कहलाए जाएं और इससे आप लज्जित हों, किंतु आपको विश्वास रखना है कि आप परमेश्वर के हैं और आपको परमेश्वर की ओर से इस संसार में कार्य करना है, उनके लिए खड़े होना है। तब 21 से 22 पदों में हम देखते हैं कि ये दिन वास्तव में उनके लिए कितने आनंद का दिन होगा, जबकि दाऊद का वंशज एक बार पुनः दाऊद के सिंहासन पर विराजमान हुआ है। उन्होंने युआश को राज सिंहासन पर बैठा दिया है, और इस प्रकार से दुष्टता और बाल देवता की उपासना का वहां से अंत हुआ है, और उसके मंदिर को भी देश से उखाड़कर फेंक दिया गया। मेरे मित्र, जब हम सत्य को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवनों में जागृति आती है। जागृति के साथ दुष्ट अर्थात शैतान के कार्यों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो जाता है, और तब शैतान के कार्य नष्ट किए जाते हैं और हम पुनः परमेश्वर के बन जाते हैं और उनका कार्य करते हैं। और इस तरह 11वां अध्याय समाप्त होता है और हम आरंभ करते हैं 12वें अध्याय को। 12वें अध्याय का शीर्षक है योआश का शासनकाल। योआश को इब्रानी भाषा में यहोआश भी कहते हैं। 11वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से यहोयादा याजक के संरक्षण में यहूदा के सिंहासन पर दाऊद के वंशज योआश को बैठाया गया, और जबकि परमेश्वरहीन स्त्री अतलिया ने संपूर्ण राजवंश का विनाश कर डाला, परंतु अंत में उसका स्वयं का भी विनाश हो गया, और अंततः परमेश्वर की इच्छा ही पूर्ण हुई। परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होने से अर्थात योआश के राजा बनने से संपूर्ण प्रजा में आत्मिक जागृति आई, और जागृति का अनुसरण आनंद और शांति ने किया। 12वें अध्याय में हम योआश के शासन के विषय में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इसकी सफलता के पीछे यहोयादा याजक का महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक महान आत्मिक आंदोलन का आरंभ है, जिसे हम जागृति भी कह सकते हैं। इस अवसर पर मैं आपका ध्यान उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य के समस्त राजाओं पर भी ले जाना चाहता हूं। मित्रवर, इसराइल के उत्तरी राज्य पर कुल मिलाकर 19 राजाओं ने राज्य किया। खेत का विषय यह है कि एक भी राजा भला राजा नहीं था, सभी के सभी दुष्ट थे। सभी ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यहूदा के दक्षिणी राज पर 20 राजाओं ने राज्य किया। उनमें से केवल 8 राजाओं को हम ठीक राजाओं की श्रेणी में रख सकते हैं, और उनमें से 5 राजाओं को विशेष श्रेणी में रख सकते हैं, और इन 5 राजाओं के शासनकाल में 5 आत्मिक आंदोलन आरंभ हुए। दूसरे शब्दों में 5 बार यहूदा के दक्षिणी राज्यों में सुधारात्मक कार्य हुए। इनके समय में यहोवा की वेदी की अग्नि निरंतर जलती रही। परमेश्वर ने अपने लोगों से पुनः संपर्क स्थापित किया, उनसे भेंट की। उन्होंने अपनी प्रजा को पुनः नई ताजगी अर्थात नई आत्मिक शक्ति प्रदान की, और ऐसे समय में प्रजा के लोग परमेश्वर के वचन की ओर पुनः वापस लौटे, वे परमेश्वर की आराधना करने लगे और तब उनके मध्य सामर्थ्य और संपन्नता दिखाई देने लगी। मित्रवर, जब जागृति आती है तब नया आनंद भी होता है, सुधारात्मक कार्य होते हैं, शैतान के कार्य नष्ट होते हैं, पुरानी प्रथाएं परंपराएं तोड़ी जाती हैं, स्वार्थ लोभ मनमुटाव ईर्ष्या भेदभाव घृणा की वेदियां ढाई जाती हैं, परमेश्वर और उनका वचन आदर पाता है और उन्नति भी करता है, लोगों में नया प्रेम आध्यात्मिक अर्थात अगापे उत्पन्न होता है। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के 4-8 पदों में इस प्रेम के गुणों को वर्णन किया है। स्वाध्याय 12 में हम युआश को एक राजा के रूप में देख रहे हैं, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा राजा 12 अध्याय 1-3 पद तक, यहू के सातवें वर्ष में युआश राजा हुआ और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बैरशिबा की थी। जब तक यहोयादा याजक युआश को शिक्षा देता रहा उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, फिर भी ऊंचे स्थान ढाए नहीं गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों में बलिदान चढ़ाते और धूप जलाते रहे। मित्र, हम देखते हैं कि युआश 7 वर्ष की आयु में यहूदा के सिंहासन पर बैठा है। यहोयादा याजक ने उसका सही ढंग से परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन पोषण किया है और इसलिए उसने वह कार्य किए जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक थे। फिर भी सुलेमान के द्वारा बोया गया बीज अर्थात वो पाप समाप्त नहीं हुआ। लोग ऊंचे स्थानों में बलिदान चढ़ाते और धूप जलाते रहे। 4 पद में हम पढ़ते हैं, तब युआश ने याजकों से कहा, यहोवा के भवन में अर्पित की हुई भेंटों के रूप में प्राप्त धन जनगणना के अनुसार लगाया जाकर व्यक्ति पीछे मूल्यांकित धन और जितना धन कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यहोवा के भवन में लाता है वह सब धन याजक अपने अपने लोगों से लें और जहां कहीं भवन टूटा फूटा हो आवश्यकता के अनुसार मरम्मत करें। अब इस प्रकार से युआश आंदोलन आरंभ करता है। वह सर्वप्रथम परमेश्वर के भवन की मरम्मत का कार्य आरंभ करता है। तब 9 पद से आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में एक छेद बनाया और उसे यहोवा के भवन के प्रवेश द्वार की दाहिनी ओर वेदी के समीप रख दिया और भवन की देहली की रक्षा करने वाले याजक उसमें सब धन जो यहोवा के भवन में लाया जाता था डालने लगे। जब जब वे देखते कि संदूक में बहुत धन है तब तब राजा के लेखपालक और महायाजक आकर थैलों में भर देते और यहोवा के भवन में प्राप्त धन को गिन लेते थे। फिर वे उस तौले हुए धन को उन काम करने वालों को सौंप दिया करते थे जो यहोवा के भवन के निरीक्षण के अधिकारी थे। और ये लोग यहोवा के भवन में काम करने वाले बढ़ईयों कारीगरों को दे दिया करते थे और वे राजमिस्त्रियों तथा पत्थर तराशने वालों को तथा यहोवा के भवन की मरम्मत के लिए इमारती लकड़ी तथा तराशे हुए पत्थर तथा भवन की मरम्मत के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं खरीदने को दे दिया करते थे और इस प्रकार से ये उस धन को व्यय कर रहे थे। 15 पद में हम पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए ये धन दिया जाता उनसे हिसाब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि वे विश्वास योग्यता से कार्य करते थे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज वर्तमान कलीसिया में बहुत से कार्य असफल हो जाते हैं। कारण यह है कि कार्य को देखने वाले लोग विश्वास योग्यता के साथ कार्य नहीं करते, किंतु युआश के समय में उसके कर्मचारी विश्वास योग्यता से कार्य करते थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के भवन की मरम्मत का कार्य पूरा किया। तब 17 पद से हम पढ़ते हैं, मंदिर की संपत्ति सीरिया के राजा हजाएल को दे दिया जाना। तब सीरिया के राजा हजाएल ने गत के विरुद्ध युद्ध किया और उस पर अधिकार कर लिया। फिर हजाएल यरूशलेम पर चढ़ाई करने को उन्मुख हुआ और यहूदा के राजा युआश ने सब पवित्र वस्तुएं जो यहूदा के राजाओं यहोशापात यहोराम और अहज्या नामक अपने पूर्वजों द्वारा भेंट की गई थी और स्वयं अपनी अर्पित वस्तुएं और यहोवा के भवन के कोषागार में और राजभवन में पाया गया सारा सोना सब लेकर सीरिया के राजा हजाएल को भेज दिया। तब वह यरूशलेम से चला गया। तब आगे हम पढ़ते हैं कि योआश के शेष कार्य अर्थात सब कुछ जो उसने किया वह यहूदा के राजाओं की पुस्तक में लिखे हैं। उसके कर्मचारियों ने राजद्रोह का षड्यंत्र रचकर और मिल्लो के भवन में जो सिल्ला की ढलान पर है योआश की हत्या कर दी। मेरे मित्र, उनके मध्य विश्वास योग्य कार्यकर्ता थे जिनके कारण मरम्मत का कार्य तो पूरा हो गया, किंतु हम देखते हैं कि योआश समय को मोल लेने का प्रयास करता है। उसने परमेश्वर यहोवा से सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा राजभवन की सारी संपत्ति तथा पवित्र वस्तुएं सीरिया के राजा हजाएल को सौंप दी। अब यहां हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि यद्यपि ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था, उसने परमेश्वर के भवन की मरम्मत को कराया, किंतु उसने परमेश्वर की वस्तुओं के महत्व को उसके मूल्य को नहीं समझा। और जब उस पर संकट आया तो वह परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की अपेक्षा परमेश्वर के भवन की पवित्र वस्तुएं हजाएल को दे देता है। परंतु क्या ये वास्तव में इस साधन से अपने प्राण की रक्षा कर सका? मेरे मित्र, अग्रिम पदों में हमने देखा कि वह अपने कर्मचारियों द्वारा मारा गया। वह युद्ध भूमि में न मरकर किसी व्यक्ति के घर में मारा गया। ये लज्जाजनक मृत्यु है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अमस्या हुआ। योआश केवल 47 वर्ष की आयु में मर गया। वह एक अच्छा राजा था। हम देखेंगे कि उसका पुत्र अमस्या भी एक अच्छा राजा होगा। आज हम यहीं ठहर जाते हैं। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपकी सहायता करें और आपको आशीष दें। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।